ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से पांचवां स्कंध अध्याय 15। इस अध्याय का नाम है प्रियव्रत के वंशियों का जस वर्णन। श्लोक संख्या 13। यत् प्रणनात् बरहसि देवत्रय मनुष्या विरुता तृणम् अभिरिञ्चात् प्रियेता सद्धा सह ह विश्वजीवा प्रीतः स्वयं प्रीतिम् अगाता गयस्य यत् प्रीणनाद् बरहसि देवत्रयंगा मनुष्यवीरो तृणमाभिरञ्चात् प्रियेत सद्या सह विश्वजीव प्रियेत सद्धा सह विश्वजीव प्रीत स्वयं प्रीतिं गायय गादयस्य प्रीतः स्वयं प्रीतिं गादगस्य यत् प्रीणनाद् बरहसि देवत्यङ्गा यत् प्रीणनाद् बरहसि देवत्रयंगा मनुष्य वीणो तृणमाभिरञ्चात् मनुष्य वीरो तृणमाभिरञ्चात् प्रियेत सद्धा सह विश्वजीव प्रियेत सद्धा सह विश्वजीव प्रीत स्वयं प्रीतमगात् गयस्य प्रीत स्वयं प्रीतमगात् गयस्य
Yeah.
माताजी यत् प्रीणनात् श्री भगवान के प्रसन्न होने से बरहसी यज्ञ क्षेत्र में देवता तथा निम्न पशु मनुष्य मानव समाज विरुता पादक तथा वृक्ष तृणा घास आविरिंचात् भगवान ब्रह्मा तक प्रियता संतुष्ट हो जाता है सद्दा तुरंत सह श्री भगवान ह निश्चय ही विश्व जीव समस्त संसार के जीवात्माओं का पालन करने वाला परमात्मा प्रीतः यद्यपि सहज तुष्ट हैं स्वयं साक्षात प्रीतिम संतोष के अगात प्राप्त हुआ गयस्य महाराज गय के अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविनाम स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब श्री भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता मनुष्य पशु पक्षी लताएं तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती है। श्री भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहने वाले हैं, तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और कहे मैं परम प्रसन्न हूं। तात्पर्य यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्माएं बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती है। वृक्ष के जड़ों में को सींचने से सभी शाखाएं पत्तियां तथा फूल हरे भरे रहते हैं। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं किंतु महाराज गाय के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में आए और कहे मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। भला महाराज गाय की समता कौन कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्मायसेते अदमोऽसु पुरुषम् मुक्ते गुणांषोडशोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो हम लोग महाराज भरत का चरित्र सुने और उसे शिक्षा प्राप्त किए, जो कुछ याद होगा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज प्रेवर्त के वंशजों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इसके पूर्व चतुर्थ स्कंध में वे महाराज उत्तानपाद के वंशजों का वर्णन किए और महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन किया जा रहा है। उनमें से यहां पर महाराज गय के भी के संबंध में बतलाया जा रहा है कि महाराज गय कैसे यज्ञ के द्वारा यज्ञपति भगवान को प्रसन्न किए और भगवान आकर के स्वयं कहे कि मैं आपके इस यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं। ये जो श्लोक है, यह श्लोक सामान्यतया सब भक्त लोग जानते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो सब लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और हम लोग उदाहरण भी देते हैं, ऐसे पेट में भोजन डाल लेंगे तो शरीर के सब अंग प्रत्यंग शक्ति प्राप्त करेगा। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो किस प्रकार से, सब प्रकार से पेड़ की टहनियां, शाखाएं, पत्ते, फल फूल सब शक्ति को प्राप्त करेंगे। तो वही बात इस श्लोक में बतलाया गया है। मुख्य चीज है कि भगवान को प्रसन्न करना। तो आज हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे, एक भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान कौन है ये पहले जानना जरूरी है और दूसरा बात भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो इन दो बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रथम बात, भगवान कौन है, भगवान को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम भगवान को जानना चाहें तो भगवान को जान सकते हैं उनके द्वारा कुछ लेकिन ज्यादातर जो उनको जानता है उनके द्वारा। कभी कभी भगवान अपने गुणों को स्वयं नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त लोग जानते हैं। संसार में भी आजकल तो हम लोग निर्लज हो गए हैं कि अपने पास गुण नहीं है, फिर भी अपना गुणगान खूब कर देते हैं, दूसरों का भी बौरव कर लेते हैं और अपना गुणगान करते हैं। लेकिन जो भद्र पुरुष होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, वो अपना गुणगान नहीं करना चाहते हैं। उनका गुणगान तो जो लोग उनको जानते हैं वे करते हैं। कई एक घटनाएं हैं भगवान के संबंध में भी। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का ही भगवान सोचे, क्या हम में इतना मधुरता है कि भक्त लोग सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए जान देते हैं, पत्नी पुत्र परिवार समाज सब कुछ, मुझ में है क्या, वो भक्ति रस क्या है, इसको जानने के लिए, इसका रहस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। वैसे ही भगवान जब अपना एक बार चेहरा देखे, भगवान कभी मिरर नहीं देखे थे, जब चेहरा देखे अस्तम में तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये ब्यूटी किसका है, कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन भक्त लोग भगवान का वर्णन करते हैं, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के गुणों का। तो भगवान को जानने के लिए स्वयं भगवान से जाने या उनके भक्त से जाने। भगवत गीता में स्वयं भगवान अपने विषय में बताए हैं, साथ साथ अर्जुन भी बताए हैं कि भगवान कैसे हैं। तो भगवत गीता भगवान को जानने का सामान्य स्रोत है, जहां से हम जान सकते हैं। जैसे अर्जुन बताए हैं भगवान के विषय में, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। हे कहते हैं कि हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं, हम सब लोग ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान पर ब्रह्म हैं, समस्त ब्रह्मों के स्रोत हैं, जैसे सूरज और सूरज की किरणें। सूरज की किरणें जो हैं वो ब्रह्म हैं, और सूर्य जो हैं वो पर ब्रह्म हैं, जहां से किरणें निकलती हो। तो परम ब्रह्म परम धामम, सब लोगों का निवास स्थान भगवान है। पवित्रम, भगवान सब प्रकार से पवित्र हैं, भगवान का सब कुछ पवित्र है, भगवान का नाम पवित्र है, भगवान का धाम पवित्र है, भगवान का प्रसाद पवित्र है, भगवान का दर्शन पवित्र है, सब पवित्र है। और जो व्यक्ति इस पवित्रता पवित्र से संबंध स्थापित करेगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जैसे भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो नाम है वो पवित्र है, और जो नाम लेगा वो पवित्र हो जाता है। पापी तापी यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो, ये नाम के द्वारा लोग पवित्र होते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग गाते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्री कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम प्रणामित स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम सबको पवित्र करने वाला है। नाम नाम कोई कैसे भी ले, जानकर अनजान में खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम लो, देश काले नियम नाय सर्व सिद्धि हो अजामिल। कैसे नाम लिया? वो नाम का महिमा भी नहीं सुना था, पापी था, लेकिन अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को भी नहीं पुकारा, लेकिन नारायण नाम पुकारते ही वह पवित्र हो गया। यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसष्णु राजान ब्रह्मान चिरण्यान गिण्यन्ति एते। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है, वह समस्त तपस्याओं को कर लिया है, वो पवित्र हो जाता है। कितना भी पापी से कपापी नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किड़ात हूड़ांद पुलिंद पुलकसा आभी कंखा जमना खसादय इन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धियंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शुद्धयंति, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि नाम कोई कैसे भी ले, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वात् कतोपि वा यस्मरेत पुंडकाच्छ सभ्यांतर शुचि। अंदर से और बाहर से सब प्रकार से पवित्र कर देता है नाम। तो भगवान पवित्र हैं, भगवान का सब कुछ पवित्र है। अर्जुन इस बात कहते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। भगवान बेस्ट जेंटलमैन है, इसीलिए जो भगवान का भक्त होता है वो भी जेंटलमैन हो जाता है भगवान के संगति में भक्ति कर करके। भगवान इतने जेंटलमैन हैं कि कोई थोड़ा भी भगवान को कुछ देता है तो भगवान एक्नॉलेज करते हैं, कुछ भी दे। बिदुराइन साग दी थी, पुतना बीस दी थी, फिर भी भगवान एक्नॉलेज किए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते, कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। अरे उन भगवान से और कौन दयालु हो सकता है? तो भगवान एक्नॉलेज करते हैं, जेंटलमैन है। कोई भी हो भगवान को पुकारता है, चाहे आर्थ हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, चाहे शुद्ध ही भक्त क्यों ना हो, भगवान एक्नॉलेज करते हैं। थोड़ा से थोड़ा भी कार्य कोई भगवान के लिए करता है, भगवान एक्नॉलेज करते हैं। यह है जेंटलमैन का स्वभाव। आप लोग कथा जानते हैं किस प्रकार से हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के जा रहे थे और वो गिलहरी बेचारी नहा करके फटाफट आकर के बालू में अपना शरीर लपेट करके बालू डाल दी थी। हनुमान जी ने अच्छा ही सोचा कि हम लोग इतना पत्थर ला रहे हैं, इसको क्या करने की जरूरत है। साइड करने के लिए कहा उसको कि कहीं पैर में दब जाओगी तो मृत्यु हो जाएगी, साइड हो जाओ। भगवान श्री राम उसको भी देख रहे थे, हनुमान जी को भी देख रहे थे और गिरड़ी को भी देख रहे थे कि वो सेवा कर रही है। ए यथा माम प्रबदंते तास्तयो भजामि हम। तो जिस रूप से भगवान के पास जाता है भगवान उसे उसी रूप में। तो भगवान के समान कोई दयाल नहीं, कोई जेंटलमैन नहीं हो सकता है। कृष्ण मोस्ट जेंटलमैन, सबसे दयालु है कृष्ण, सबसे जेंटलमैन है, भद्र पुरुष है। परमम भवाम पुरुषम, भगवान पुरुष हैं। पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर, सब चीज के भोक्ता हैं भगवान। भोक्ता आरंभ जब तब शाम, सब कुछ के भोक्ता हैं, एंजॉयर है भगवान। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत पुरुष हैं, हमेशा वो एंजॉयर थे, हैं और रहेंगे। हम लोग इंजॉयर बनना चाहते हैं, है नहीं बनना चाहते हैं। इंजॉय भी आर्टिफिशियली करते हैं, बचपन में कुछ एंजॉय करते हैं, जवानी में कुछ एंजॉय करते हैं, बुढ़ापा में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब गरम गरम जलेबी बन रही हो और किसी को डायबिटी हो, तो जीवा से बेचारा को पानी आ रहा है जलेबी खाने के लिए, लेकिन सोचता है डायबिटी है खा लूंगा तो गड़बड़ हो सकता है, तो एंजॉय भी नहीं कर सकता है बुढ़ापा में। लेकिन भगवान हमेशा एंजॉय करते हैं, शाश्वतम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, भगवान दिव्य हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। दिव्य का अर्थ बताया गया है शास्त्रों में कि दिव्य वही है जो अपने आप में संतुष्ट है। हम लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं है इसलिए हम लोग दिव्य नहीं है, जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। तो भगवान किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वे अपने आप में संतुष्ट हैं, दिव्य है। पुरुषम शास्त्रम दिव्यम आदिदेवम अजम विभू, ये आदिदेव हैं, अजन्मा हैं और वे विभू हैं, हम लोग अणु हैं और वे विभू हैं। अर्जुन जब इतना कह लिए सोचे कि लोग शायद विश्वास ना करेंगे क्योंकि मेरे कृष्ण मित्र हैं, मेरे फुफेरे भाई हैं, तो शायद लोग विश्वास ना करेंगे मैं बात कहता हूं, अपने का सब लोग बड़ाई करते हैं। तो कहते हैं कृष्ण मैं ही नहीं कह रहा हूं, मानो कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो, ये बात सही नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं ही नहीं कहता हूं, आहुस्तम निश्चय सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यासो, मैं स्वयं नहीं कहता हूं, अन्य लोग भी कहते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, देवल कहते हैं, व्यास कहते हैं, सब लोग कहते हैं। अथॉरिटी को कोट कर रहे हैं भगवान के भगवत्ता को प्रतिपादित करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो भक्त लोग बतलाते हैं भगवान कौन है, स्वयं भगवान बतलाए कि मैं कौन हूं, अहम सर्वस्व भवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुद्धा भाव समन्वित। ये सब जो चार श्लोक है ये बताया गया है, भगवान बताए कि मैं कौन हूं, सब कुछ मुझसे निकला हुआ है। तो ये भगवान का एक ज्ञान हुआ, आंशिक ज्ञान। अब भगवान के ज्ञान में भी भगवान के कई एक प्रकार के स्वरूप हैं, भगवान के कई एक प्रकार के, मुख्य करके छह प्रकार के अवतार का वर्णन किया गया है, पुरुषावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, शक्त्यावेशावतार, जुगावतार और कौन है गुणावतार, ये भगवान के अवतार हैं। अब इनमें भी जो भगवत तत्व प्रधान हैं, भगवान के अवतार जो हैं, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में किया गया है, भगवान के 24 अवतारों का अलग अलग वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करने के बाद यहां तक कृष्ण बलराम का ही वर्णन किए और अंत में कहते हैं एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे। ये जितने भी हैं जिनका मैं वर्णन किया कहते एते चौ अंश कला पुंसम, उन परम पुरुष के ये अंश और कला है, लेकिन इनमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है, वो सब कुछ करने में फ्री हैं अन्य भगवान लोग सब कुछ करने में फ्री नहीं है, लेकिन कृष्ण सब कुछ करने में फ्री है। अन्य देवी देवता लोग जिसको लोग भगवान मानते हैं संसार में, कोई कुछ दे देता है, इंद्र चंद्र वरुण शिव जी काली दुर्गा सबको लोग भगवान मानते हैं, ये लोग स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि राम जी भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं। राम जी के पास श्री रूपनाखा आई थी कि मुझे शादी कर लीजिए, शादी किए नहीं किए ना, लेकिन कृष्ण के पास कोई जाए तो कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ, तुरंत शादी कर लेंगे। राम जी चाहे नारायण, कोई गोपी कोई स्त्री जा रही है दही लेकर के, उसका पल्लू खींच सकते हैं? राम जी खींचेंगे? मर्यादा में है। नारायण खींचेंगे? नहीं खींचेंगे, लेकिन कृष्ण पल्लू खींच लेंगे, मटकी तोड़ देंगे। ते भगवान है जो कि किसी बंधन में ना हो, पूर्ण स्वतंत्र हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान जो है वे कृष्ण है, परम भगवान जो है वे कृष्ण है। आचार्यगण इसका प्रतिपादन किए हैं विभिन्न रूपों से, ये कृष्ण ही कैसे परम भगवान है। अन्य जितने भी उनके अवतार हैं, अंश अंशांश विनांश इत्यादि हैं, लेकिन परम भगवान जो है कृष्ण है। उन्हीं कौन? कृष्ण द्वारिकाधीश और मथुरेश, ये लोग नहीं, श्याम सुंदर जो ब्रज में निवास करते हैं, ये मथुरेश और द्वारिकाधीश इनका भी लिमिटेशन है, लेकिन श्याम सुंदर का लिमिटेशन नहीं है। नंद नंदन का लिमिटेशन नहीं है। तो भगवान अपने भगवत्ता का विस्तार किए पूर्णतया ब्रज में, तो ये परम भगवान है, ये परम भगवान है। भगवान के साथ जो संबंध है ईश्वर्यमयी और माधुर्यमयी, तो जो माधुर्यमयी संबंध है वह संबंध पूर्ण संबंध है। ईश्वर्यमयी भी संबंध ठीक है, लेकिन माधुर्यमयी जो संबंध है, देवकी कुंती इन लोगों का जो संबंध है कृष्ण के साथ में, वह ईश्वर्यमयी संबंध है। लेकिन नंद यशोदा इत्यादि ब्रज की गोपियों का जो संबंध है कृष्ण के साथ में, वह माधुर्यमयी संबंध है। जब यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड को देखा तो चक्कर आने लगा उनको कि ये क्या मैं देख रही हूं, चकरा गई यशोदा मैया कि क्या कर मैं देख रही हूं। जब लोग कहते थे कि यशोदा रानी आपका बेटा ये विष्णु है नारायण है, नहीं तो नारायण का अवतार है, गर्गाचार्य जैसे कहे थे, यशोदा मैया कहते अच्छा देखता हूं कैसे नारायण है, कान पकड़ देते करने लगते थे, तो कहते नारायण है तो नारायण होता थोड़े है, नारायण नहीं है मेरा लाला है। तो वो जो स्वभाव है, वह जो तत्व है, वह परम तत्व है कृष्ण का, जो स्वरूप नंदनंदन का, श्याम सुंदर का, यह जो स्वरूप भगवत्ता का परम सीमा चरम सीमा जो है कृष्ण को जानना, श्याम सुंदर को जानना। तो इस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग रूपानुग वैष्णव हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, और सठ गोस्वामी गण विभिन्न प्रकार से भगवान के भगवत्ता का निरूपण किए हैं विभिन्न शास्त्रों में। तो इनफैक्ट भागवतम में नैमिषारण्य के ऋषियों ने जब सुत गोस्वामी से प्रश्न किया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके आप भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बतलाइए। छह प्रश्न में से एक प्रश्न भी था कि भगवान के अनासंग अवतार हैं, तो जो मुख्य है उनका बताइए। तो आप बतलाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। अब यहां पर इस श्लोक में जिस भगवान का वर्णन किया गया है ये जो भगवान है जिसका यहां पर वर्णन किया गया है विश्व जीव शब्द कहा गया इस श्लोक में, यानी परमात्मा, परमात्मा का। और भगवान के जो छह प्रकार के अवतार हैं उन अवतारों में से परमात्मा का अवतार कहां बैठता है बताइए आप लोग। नहीं, छह जो अवतार है, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, उसमें से परमात्मा कौन है? लीला अवतार परमात्मा है, पुरुषा अवतार। पुरुषा अवतार के रूप में भगवान आते हैं, कारणोदक साई विष्णु के रूप में, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में। जो क्षीरोदक साई विष्णु, उनका दो काम है। एक काम है सृष्टि का पालन करना और दूसरा काम है समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहना। तो परमात्मा के रूप में इन पुरुषावतार का यहां पर वर्णन किया, विश्व जीव इन पुरुषावतार को, परमात्मा को प्रसन्न कर ले, सब प्रसन्न हो जाएंगे, मोटा मोटी भगवान को। यहां पर लोग, पहला नंबर तो भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है लोगों को, वो किसी को भगवान बना देते हैं, पेड़ को भी भगवान बना देंगे, पत्थर को भगवान, किसी को भगवान बना देंगे, अपने कामना के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार भगवान बना देंगे और पूजा का पद्धति भी निर्णय कर लेंगे अपने अनुसार। ये भक्ति नहीं है, भक्ति अपने अनुसार नहीं होती है। शुद्ध भक्ति का मतलब अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मद अनावृत अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, अपने अनुसार नहीं, भगवान के अनुसार। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया भक्ति भक्ति होता है। तो भगवान को प्रसन्न करना, संसार में लोग समझते हैं कि इसको प्रसन्न कर लूंगा, इसको प्रसन्न कर लूंगा, अन्य प्रकार के देवताओं के भजन पूजन में लोग लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग देवताओं के भजन पूजन में लगे हुए रहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा ही पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक, हम अविधि पूर्वक मेरा पूजा करते हैं। और देवताओं के पूजा से जो फल प्राप्त होता है क्षणभंगुर होता है, क्योंकि देवता लोग क्षणभंगुर हैं। कैसे है, तद्भवत अल्पमेधसाम, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम देवान देवो जो यान्ति मद्भक्त यान्ति मापि। अंतवत्तु फलम तेषाम, देवताओं के दिया द्वारा दिया गया जो फल है, अंतवत्तु फलम तेषाम, वो अंतवत्तु खत्म होने वाला है। और जो देवताओं का भजन करता है, कहते अल्पमेधसाम कम बुद्धि वाला है। देवताओं का भजन करने वाले लोग देवता के लोक में जाते हैं और भगवान कहते हैं मेरा भजन करने वाले लोग मुझे प्राप्त करते हैं। यहां पर सातों दिन के लिए देवताओं का लोग विधान कर दिए हैं। सोमवार का किसका, शिव जी का, मंगलवार का हनुमान जी का, गणेश जी का भी, गणेश जी का, बुधवार को हैं कृष्ण को, गुरुवार को, अरे बोलो तो कम से कम, फ्राइडे को मैं जानता संतोषी माता का लोग करते हैं है? फ्राइडे, शनिवार को, हाँ कल मैं गुप्ता जी घर से आ रहा था तो यहां पर बहुत ट्रैफिक था, मैं गणेश क्या बात है आज ये मंदिर में उठा, बोलिए आज शनिवार है ना, वहां पर शनि का पूजा करते हैं इस मंदिर में, बगल के मंदिर में है? तो सातों दिन जैसे मछली फेंकने वाला जाल फेंकता है अंदाज से है? हम फिशिंग करते हैं, क्या फायदा है सब करने से, अल्पमय शाम बुद्धिमान नहीं है। हमको चाहिए भगवान का भजन करना, कृष्ण का भजन करना। जो कृष्ण का भजन करता है वो सबको अपने आप प्रसन्न कर सकता है। उदाहरण यहां पर दिया गया है कि अनुवाद में सॉरी तात्पर्य में उदाहरण दिए हैं वृक्ष का, यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे तो समस्त देवताओं को अपने आप प्रसन्न कर लेंगे। ब्रह्मा पर्यंत समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण, अन्य सबको प्रसन्न कर लेंगे। भगवान भी अपने जीवन काल में जब यहां पर तीसरा धाम पर थे तो वे लीला बतलाए, जब इंद्र का व्यवस्था हो रहा था पूजा करने के लिए तो नंद बाबा को समझाए कि आप गलत काम कर रहे हो, क्या फायदा है, ये तो पोस्टमैन है, पोस्टमैन काम है पोस्ट डिलीवर करना, अपने बाप घर से ला रहा है, कोई दे रहा है ला रहा है, तो पोस्ट ऑफिस भगवान है, अन्य सब लोग पोस्टमैन है। तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान संबंध रहेगा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रश्न उठता है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, भगवान का तो न अता पता अपने पास है नहीं, एड्रेस है नहीं, हम जानेंगे कहां। हम जानते हैं भगवान है, भगवान सब कुछ कराते हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो भगवान को के पास जाने के लिए, उनको जानने के लिए ये जरूरी है कि उनके एजेंट के पास जाएं, और साधु लोग उनके एजेंट हैं। यदि साधुओं को हम प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, इजी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं आसानी से खुश हो जाता हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति आपृच्छति। कोई पत्ता डाल देता है तुलसी का, फल दे देता है, जल डालता है, मैं उससे खुश हो जाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्तों को प्रसन्न करना। यदि भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्या अप्रसादात न गति कतो भी। तो भक्त को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और गुरु जो शब्द है वो पुरुलर नंबर होता है, गुरुं वैष्णवांश्च, समस्त वैष्णवों को प्रसन्न करना चाहिए। मंदिर में है भगवान के प्रतिनिधि वैष्णवगण हैं, गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि मैनेजमेंट है, उन्हें प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी को भी हम प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी कैसे प्रसन्न होंगे बताइए आप लोग हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। और प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे उनके आदेशों का पालन करने से। इफ यू लव मी देन फॉलो मी, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे उनके आदेशों का पालन, उनके शिक्षाओं का पालन करने से, तो उनके ग्रंथों में उनकी शिक्षाएं हैं और हम देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के कितने प्रिय हैं, कि प्रभुपाद जी जो कुछ सोचे भगवान पूरा किए। केवल सोचने मात्र से जो इच्छा किए भगवान पूरा किए। जैसे रूप सनातन इत्यादि सोचते थे भगवान पूरा करते थे, कभी कभी ग्लानी होने लगती थी उन लोगों को, कभी ग्लानी होने लगती थी। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुंड पर बैठे हुए थे और उनको इच्छा हो गई, ये थोड़ा धन होता तो मैं राधाकुंड का अच्छा निर्माण करा देता। बाद में ग्लानी आया, मैं ऐसा सोचा कि सबको छोड़ कर मैं यहां भजन करने आया, ये धन प्राप्त करने का विचार कहां से आ गया। बड़ी ग्लानी हुई। तो दूसरे दिन एक सेठ जा रहे थे बद्रिक आश्रम, उन्हें स्वप्न हुआ कि जो धन लेकर आप बद्रिक आश्रम जा रहे हो, यह धन लेकर के जाओ और हमारे भक्त रघुनाथ हैं उनको दो, वो राधा कुंड का निर्माण करना चाहते हैं। और नेक्स्ट डे वो सेठ जी आए धन लेकर के, और इस प्रकार से राधा कुंड का निर्माण हुआ। तो केवल इच्छा मात्र से, इच्छा करने से, प्रभुपाद जी की इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि अपने गुरु जी का आज्ञा मैं पालन करूं और भगवान मैनिफेस्ट किए उनके समस्त इच्छाओं को। तो इच्छा किए प्रभुपाद जी, लेकिन परिश्रम भी किए, ये नहीं कि बैठे बैठे इच्छा करते रहे और सब काम होता रहा, ये भी बात नहीं है। प्रभुपाद जी परिश्रम किए भगवान को संतुष्ट करने के लिए। एक एक चीजों को हम लोग किताब पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये फोटो कितना सुंदर लगता है देखने में है? कहते हैं वाह क्या फर्स्ट क्लास का आर्टिस्ट से किया है, ये भरत जी का कितना अच्छा बनाया है, ये कैसे कैसे फोटो फर्स्ट क्लास का। लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगा, प्रभुपाद जी एक एक फोटो को आर्टिस्ट लोगों को बैठा करके बतला बतला करके और फोटो को बनवाए हैं। तो अभी कुछ गलती हो रहा था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। एक बार जदुरानी माता जी एक बार नारद जी का फोटो बना रहे थे, तो वे नारद जी का फोटो बना रही थी कोई इंडियन आर्टिस्ट का आर्ट देख करके और बना रही थी। तो जैसे यहां बनाते हैं नारद जी का चोटी सिखा ऊपर होता है और वो नंगे शरीर घूमते रहते हैं ऐसे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नारद जी ऐसे नहीं थे, नारद जी पक्के ब्रह्मचारी हैं है? और प्रभुपाद जी बतलाए कैसे नारद जी का फोटो बनाना चाहिए। जितने भी आर्टिस्ट थे उन लोगों से वैसे ही एक एक चीज का अकाउंट का है, अकाउंट का देखा जाए, ये इतना बड़ा मंदिर इतना बड़ा सोसाइटी ऐसे खड़ा नहीं हो गया। प्रभुपाद जी जो पत्र आता था उसके इन्वेलप को रखते थे और उस पर लिखते थे। एक बार किसी को पत्र भेजना था सौरभि महाराज थे कहीं शांता क्रूज जाना था पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए, तो रिक्शा से जाना था ऐसे कुछ जाना था या कुछ ऐसे ही था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जितने का पोस्ट कार्ड लाने के लिए, तो जितने का पोस्ट कार्ड नहीं है उसे ज्यादा तुम्हारा रिक्शा का भाड़ा लग जाएगा है? तो प्रभुपाद जी बड़े कौशस थे, एक एक चीजों को लेकर के बड़े कौशस थे प्रभुपाद जी। इतना बड़ा सोसाइटी ऐसे ही नहीं प्राप्त कर दिए, वे एक निष्ठ थे, उनका लगाव था कृष्ण में और अपने गुरु में। तो भगवान को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है तो सरल तरीका है भगवान के भक्त को प्रसन्न किया जाए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। प्रभुपाद जी साधना भक्ति हम लोगों को दिए हैं, मंगला आरती में आए, सोलह माला जप करें अच्छा से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, भागवत कथा सुने, यथाशक्ति भगवान का सेवा करें, पुस्तक वितरण करें, तन से मन से धन से सेवा करें, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। हम लोगों के पास बुद्धि है, अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। एक भक्त एक बार आया प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने तुमको बुद्धि दिया है, जाओ कुछ ऐसा काम करो जिसे भगवान खुश हो। तो वो भक्त गया, बड़ा परेशान था देखकर कि भक्त लोग इंडिया से वो मृदंगा मिट्टी का लेकर आते हैं, प्लेन में टूट जाता है। तो वह गया, वो फाइबर का प्लास्टिक को फाइबर का बलराम मृदंगा बना करके लाया, प्रभुपाद जी को अर्पित किया। प्रभुपाद जी बड़े खुश थे है? तो हम लोग पास बुद्धि है, उसका दुरुपयोग और सदुपयोग, उसका सदुपयोग करना है। कैसे? जो वैष्णव लोग कहते हैं पहले आज्ञा पालन कर करके, पहले अपने से प्रयास करें, लेकिन बेस्ट है कि आज्ञा पालन करते हुए। और इस प्रकार से हम यदि करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। मैं सोचा था कि नौवें स्कंद से पढ़ूंगा लेकिन समय नहीं है, वो दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज के कथानक में जो कथा था कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से कि मैं परतंत्र हूं, मैं बंधुआ हूं भक्तों का, मेरा अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्तों पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन रहने वाला हूं, जिन भक्तों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है मुझे उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूं। तो भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं, यदि हम भगवान को देना सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। हम लोग भगवान से केवल लेना सीखे हैं, भगवान के पास जाते हैं ये मांगते हैं ये मांगते हैं ये मांगते हैं, भगवान को देना सीखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। जिस प्रकार से आप देखे हैं गर्मी का दिन हो और कांच आप ले लो, कांच को सूर्य के रोशनी से स्थापित कराओ और कुछ समय के बाद उसमें से अग्नि प्रवेश अग्नि निकल सकता है, जला सकते हो है? वो सूर्य का रोशनी कांच पर पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया लेकिन उसमें प्रज्वलित आग आ जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है, आता है, वो आ जाता है हमारे पास, क्योंकि भगवान किसी चीज की जरूरत है नहीं, वो आप काम है, अपने आप में संतुष्ट हैं, वो हमारे पास आता है। और वह जो आता है हमारे पास जैसे सूर्य की रोशनी जब आता है तो अग्नि के रूप में आता है, जला डालता है वस्तु को, वैसे ही भगवान का जो कृपा आता है वो हमारे समस्त पापों को जला डालता है। तो भगवान को हम देंगे रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे पास आएगा। ऐसे हम लोग खाते हैं चावल दाल इत्यादि भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान तो भूखे नहीं के सब कुछ खा लिए और रिफ्लेक्ट किए, कृपा के रूप में हमको दे दिए, और वह जो प्रसाद होता है वो हमारे समस्त पापों को जला डालता है। तुम्हें सीखना चाहिए कि भगवान को हम कैसे अर्पित करें, भगवान को खिलाने का भगवान को प्रसन्न करने का आर्ट यदि कोई जानता है तो वह है वैष्णव। वैष्णव को संतुष्ट करेंगे तो भगवान आसानी संतुष्ट हो जाएंगे। तो आज के श्लोक में यही बताया गया है कि यदि भगवान संतुष्ट हो जाए तो समस्त देवी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज गए कि यज्ञ से भगवान संतुष्ट थे और आकर कहे कि मैं संतुष्ट हूं। तो जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है वो एक ही काम के लिए है, वह है भगवान को संतुष्ट करने का। तो जितने भी कंग्रीगेशन है, चाहे ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हो, गृह थाको बने थाको सदा हरि बले ढाको, चाहे घर में रहिए या मंदिर में रहें, कहीं रहें, निरंतर भगवान नाम लेते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यही यज्ञ है इस युग का, कलयुग का यही यज्ञ है। और यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान यज्ञपति हैं। तो इस नाम को जपते रहें, इस नाम जप से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, अतः कृष्ण प्रसन्न होंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? माइक माइक।
गुरुजी, हम लोग बचपन से बहुत जगहों पर देखते रहे, मंदिरों में, दुकानों पर, या बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं वो बहुत प्राउडली वो भगवत गीता का समरी डालते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सो एंड सो। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि क्या वही भगवत गीता का सारांश वही है या डिफरेंट?
तो वो जो लिखे हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, तो उनसे पूछिए कि आपका कैश बॉक्स कहां है और जाकर के सब पैसा निकाल लीजिए। देखो, कुछ कहते हैं तो करे, आप ही तो लिखे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, ये गीता का समरी है, ये बकवास है, ये लोग मुरल बना दिए हैं। अच्छा है मुरल, कोई खराब नहीं है, लेकिन गीता के नाम पर मत बेचो। वो गीता के नाम पर बेचना चाहते हैं, वो गीता का समरी नहीं है। गीता का समरी है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मन मना भव मद भक्तो, भगवान का भक्त बनो, एक गीता का समरी है। अपना मन मुझ में लगाओ, एक गीता का समरी है। सब कुछ होकर मेरे शरण में आओ, एक गीता का समरी है।
मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है इंडिया में जिनको माना जाता है, जो एक्स प्रेसिडेंट भी थे, तो अपने वेबसाइट पर बड़े फॉन्डली लिखे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हो।
ये पॉजिटिव थिंकिंग है, जो हुआ अच्छा हुआ। आई मीन, प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो भी संसार में होता है भगवान आपकी इच्छा से होता है, अच्छा हो या खराब हो, सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। जैसे यहां पर लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोग तो कहते हैं भाई कर्मों के अनुसार ऐसा होता है, ये कहते हैं ना। लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हम लोग उसे प्रभावित होते हैं क्योंकि आत्म पर बुद्धि या मेरा है या दूसरे का है, देह और आत्मा दोनों को एक मानने के चलते। जब दोनों को अलग मानेंगे तब यह बात ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन आज हम देह और आत्मा को एक मान रहे हैं, इसलिए कहने के लिए लिप सर्विस तो अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जब होता है तब रोना शुरू करते हैं, उस समय नहीं पढ़ते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये लिप सर्विस है, पॉजिटिव थिंकिंग है, कोई सोचिए अच्छा है। और प्रश्न?
गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान को तो प्रसन्न करना ही है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे?
आप खाते हो तो पता कैसे चलता है पेट भर गया है?
पता चलता है ना खाते।
हाँ, तो वैसे ही भजन करते रहोगे तो पता चलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहोगे, हैं? दुख की परिस्थिति में भी, सुख की परिस्थिति में जीव जाम कैसे है, जितात्मनो प्रसन्नस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना अपमान, सुख दुख में, मान में, अपमान में, जाड़ा में, गर्मी, जो संभाव रखे वो है पहचान। लक्षण से पहचान होता है, लक्षण उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, शरीर में कंपन उत्पन्न होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भगवान का दर्शन होगा आंख से आंसू आएंगे, लक्षण है।
लेकिन वो हर वक्त थोड़ी ना आते रहेंगे आंसू और रोंगटे, हर वक्त थोड़ी ना खड़े रहेंगे,
वो हर वक्त आएंगे, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये जप करते रहो हो जाएगा।
आपके रोंगटे खड़े है क्या अभी
है?
आपके रोंगटे खड़े है?
मेरे रोंगटे तो बहुत दिन में सोए हुए हैं, अभी खड़े ही नहीं, मैं तो वेटिंग कर रहा हूं कब खड़े होंगे। लेकिन प्रोसेस ठीक है, इसको पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया, मैं शास्त्रों से बताया कि जो हम देते हैं, हम जो कुछ देते हैं भगवान उसके बदले हमको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जो नहीं देते हैं, जो नहीं देते उनके लिए हमारे नजरों से कई गुना ज्यादा देते हैं। जिस तरह 30+ में यहाँ तो कुछ बहुत से प्रोग्राम थे फ्री ऑफ चार्ज थे, लेकिन मैं जहाँ सर्विस करता था वो 5,000 रुपये भर के क्लब में गए, पता नहीं वहां क्या क्या किए होंगे, उनको हमारे से ज्यादा देते। बहुत से कत्तल खाने खोले, 2 नंबर के धंधे करते करवाते, चोरी करवाते, बहुत से गलत काम करते, फिर भी उनको भगवान बहुत कुछ ज्यादा देते। बड़े बड़े बंगले, मर्चेंट गाड़ियां, बहुत सुख सुविधा देते, फिर भगवान जो नहीं देते उनको भी देते, हम जो कुछ देते हमको तो पता नहीं कुछ देते नहीं, ऐसा आपको महसूस होता है।
तो आप भी वही करो जो कर रहे हैं।
नहीं, हम उस कर नहीं सकते, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है ना।
आप वो किसी ने फोर्स थोड़ा किया, हरे कृष्ण बन जाओ। एनीवे, वो लोग अपना फिक्स डिपॉजिट खा रहे हैं, एक दिन वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब रोएंगे, और आप अपना फिक्स डिपॉजिट बना रहे हो। वो अपने पुण्य कर्म का फल खा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अंतवत्तु फलम तेषाम, वो खत्म होगा ही। यदि आपके बैंक में पैसा है तो डेली केवल निकालते रहो, एक दिन जीरो बचेगा। लेकिन अभी थोड़ा कठिन परिश्रम करो, कुछ दुख सहो, लेकिन डालते रहो, तो अंत में काम करेगा, ठीक है।
हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न? किस पास माइक है? माइक दे दो, किसी को प्रश्न है? और सिन्हा जी प्रभु, प्रश्न नहीं हो तो कोई प्रश्न बना लेना चाहिए, दूसरों के भलाई के लिए वो काम करता है। हमारे एक महाप्रभु दास हैं, अभी आजकल तरह मंदिर कम आते हैं, वो एक ही प्रश्न क्लास में पूछते थे पहले, तो मैं कहेंगे और कभी संतुष्टि नहीं हुआ क्या, लेकिन मैं पूछा कि आप एक ही प्रश्न के बड़ा पूछते हैं, तो मैं अपने लिए नहीं पूछता हूं, दूसरे के भलाई के लिए पूछता हूं। कि अलग अलग भक्त लोग अलग अलग प्रकार से उत्तर देंगे थोड़ा। अच्छा, हाँ जी।
आपने कृष्ण के बारे में बात की कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है। अभी आपने वृंदावन या ब्रज के कृष्ण के बारे में बात की, तो जब वो आदि पुरुषम है तब ये यशोदा माँ या वो सब को आदि से कैसे आ गए? यू नो, व्हेन कृष्ण द आदि पुरुषम वो हम मानते हैं, पर आपने बोला कि वो ब्रज के कृष्ण है, वो ही पूर्णता कृष्ण है, तो उनको वो पूर्णता कृष्ण कब बनते हैं?
नहीं, वो
ब्रज में होते
हैं। वो बनते नहीं हैं, वो हैं,
वो है, पर वहां उनके इंटरेक्शन यशोदा जी से होते हैं, गोपियां से होते हैं, तो वो किस तरह से पहले आ जाते हैं?
एक गोलोक धाम में जो कुछ है वह भौम वृंदावन में आया एज इट इज। इसका मतलब है ना कि गोलोक धाम खाली हो गया, सब लोग वहां से यहां पर आए और इस धरा धाम पर वही लीला किए जो गोलोक में होता है।
मेरा क्वेश्चन वो है कि गोलोक जो हुआ वो कृष्ण के साथ ही गोलोक जब हम बोलते हैं
कृष्ण गोलोक में ही निवास करते हैं। वृंदावनम प्रत्यजम पादम एकम न गच्छति, वो कभी छोड़ते ही नहीं, वहीं पर रहते ही हैं, आज भी वहीं पर हैं। तो जब यहां पर आए थे तो उसी रूप में आए थे। और हम में और कृष्ण में अंतर यही है कि हम लोग में भेद है, हम में और हमारे देह में, इसलिए हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कैमरा होता है ना, अलग अलग कैमरा, एक कैमरा होता है कि ज़ूम करो, एक ही आदमी दस प्रकार दिखाई पड़ेगा है, और एक कैमरा कर एक ही फोटो आता है। तो भगवान ऐसे हैं कि साथ में एक्सपेंड कर सकते हैं, एक नहीं हजारों रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं। आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया शायद, नहीं पूछिए, सबको फायदा हो जाएगा शायद। हाँ हाँ, तो आदि पुरुष कैसे हैं ये ना, गोविंद आदि कैसे हैं। देखिए अब बताइए कि वृक्ष पहले आया कि उसका बीज पहले आया।
जैसे हम नारायण की बात करें, ब्रह्मा जी की बात करते हैं, हम देव लोग नारायण
नॉट नारायण है, नॉट फ्रॉम लेवल ऑफ नारायण, फ्रॉम करणमुख साई विष्णु, गर्भ साई विष्णु। हाँ, लेकिन जब लीला करने यहां पर आते हैं तो भागवत में वर्णन किया गया ना,
लीला करने के लिए आते हैं, ओरिजिन की बात, लीला की बात।
ओरिजिन हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक से इस देह से बंधन रहेगा। आप देह काटो, चिट्ठी काटो, दर्द कर रहा है तो कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। कृष्ण के ओरिजिन को जानना तो बहुत दूर है, कृष्ण के क्रियाकलाप के, उनके लीलाओं को भी नहीं जान सकते हैं, उनके भक्तों को भी नहीं जान सकते, धाम को भी नहीं जान सकते हैं। कृष्ण को जानना तो बहुत दूर रहा, कृष्ण को वही जान सकता है जो कैसे है, वो श्लोक है प्रव्रजिष नरोत्तम यह सुखात परतो विह जात निर्वेद आत्मवान। जब निर्वेद उत्पन्न हो जाए, जात निर्वेद आत्मवान, जब निर्वेद उत्पन्न हो जाए, से शरीर से संबंध विचित हो जाए और आत्मवान आप हो जाओ, सेल्फ स्थिर हो जाए, तब कृष्ण को जान सकते हैं। अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का, हम जानते नहीं हैं। हाँ, एक्सपीरियंस करते हैं कृष्ण की कृपा को, कृष्ण को जानते नहीं हैं। कृष्ण को जानना बहुत दूर है, प्रभुपाद जानते हैं, आचार्यगण जानते हैं, जो देह से परे हो गए वो जानते हैं। देखो, वर्णन करना और जानना अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गाते हैं राधे जय जय माधव जयते, सनक सनातन वर्णित चरिते, उनके चरित्रों का वर्णन सनक सनातन करते हैं, केवल वर्णन करते हैं। वर्णन करना अलग बात है और उनको जानना अलग बात है। तो ऐसे हम लोग प्रवचन कर रहे, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग एक्सपीरियंस जो है अलग बात है, अनुभूति अलग बात है। तो वह तब होती है जब देहात्म बुद्धि से हम परे हो जाए, तब। क्लियर समवट? यस, इट विल नॉट बी क्लियर सो लॉन्ग एज वी आर अटैच टू आवर बॉडी, बट वी कैन फील, यू कैन फील। हम गोलोक धाम में भी नंद बाबा हैं, जसोदा मैया हैं, सब हैं, लेकिन वहां पर अब जन, अरे भगवान जो आत्मा का ही बहुत बड़ा, किसी ने ऐसे प्रश्न किया प्रभुपाद जी से कि आप कहते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के साथ थे, तो हम आत्मा कब प्रथम बार यहां पर आया, हम कब यहां संसार में आए? प्रभुपाद ने कहा कि आप जानते हो कि हम यहां पर आ गए हैं ना, है? अब पता लगाओ कैसे यहां से बाहर निकलना चाहिए, एक कारागार है संसार, बड़ा खतरनाक जगह है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में और कोई नौका लेकर आए तो पूछे भाई मैं यहां पर डूब कैसे रहा हूं, उसको चाहिए भाई जल्दी पहले बाहर निकलूं बाद में सोचेंगे। पहले हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, बाहर निकल जाएंगे देहात्म बुद्धि से परे हो जाएंगे तब समझ सकते हैं, डूबते हुए नहीं समझ सकते हम डूब रहे हैं। हां यस माइक तो उधर ना जी। प्रभु बोले कि 9:30 बजे तक, 5 मिनट और है। तो
जो भगवान कौन है उसका उत्तर आपने बताया कि श्याम सुंदर है और राम नहीं है क्योंकि वो जो उनका इच्छा है।
मैं ये नहीं कहा कि राम नहीं है,
मतलब रूप है। जो सच्चा भगवान है वो तो श्याम सुंदर है ना।
मैं ये नहीं कहा कि राम सच्चा भगवान नहीं है,
वो रूप है भगवान का, एक छोटा सा रूप है। वो जो उनका जो इच्छा,
चलो प्रश्न अपना करो,
उनका जो इच्छा है वो पूरा नहीं, सब इच्छा नहीं कर सकते।
हाँ,
कृष्णा भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते।
हाँ, वो लीला पुरुषोत्तम है। हाँ,
क्योंकि कृष्णा भगवान शादी कर सकते, राम भगवान शादी नहीं कर सकते।
ये थे ना सीता जी से?
हाँ नहीं, दो शादी नहीं कर सकते।
अच्छा।
तो फिर आपने बताया कि द्वारका और मथुरेश के भगवान में भी ये कृष्णा भगवान नहीं है, जो गोलोक वृंदावन का जो भगवान है, तो उसमें क्या लिमिटेशन था कृष्णा में? जो द्वारका और मथुरा में कृष्णा भगवान को, मुझे लगता है द्वारका और मथुरा में भी जो इच्छा उनका था वो करते थे।
मान लो आज से 10 साल के बाद आप जज बन जाओगे, तो मान लो है अभी सही, मान लो जज बन जाओगे, आप कोर्ट में रहोगे तो व्यक्ति तो आप वही हो और अपने घर में अपने पत्नी बच्चों के साथ में बाप माँ के अंदर व्यक्ति तो वही हो, फिर भी दोनों व्यक्ति में अंतर है कि नहीं?
उम्र का अंतर है।
अरे वो तो कोर्ट में जब तुम जज रहोगे, आपकी पत्नी वहां जाएगी तो आप बोलोगे, चाहे अपना बेटा जाएगा कि ओ माय डियर सन कम हियर, आप जज कोर्ट में बोलोगे नहीं बोलोगे ना? क्यों नहीं बोलेगा?
रूल्स रहेंगे कोर्ट
है,
कोर्ट के रूल्स फॉलो करना।
हाँ, वहां पर एडिकेट है कोर्ट का ना, वो फॉलो करना पड़ेगा। वो जानते हुए कि मेरी पत्नी है मेरा बेटा है, बोल नहीं पाएगा। यदि बेटा क्रिमिनल है तो दंड देना ही पड़ेगा, नहीं कह रहे मेरा बेटा कोई बात नहीं। तो वैसे ही कृष्ण जो है, कृष्ण वही है वृंदावन में भी और वहां पर भी, राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में एक ही है, लेकिन अपने अपने लीला के अनुसार काम करने के लिए कुछ है ना, कुछ कार्य करने के लिए उसके अनुसार वे लोग अलग हैं। कृष्ण वृंदावन में कुछ भी कर सकते हैं, घर में चड्डी पहनकर घूमो कोई बात नहीं, कोर्ट में नहीं पहन सकते ऐसे।
वो क्योंकि कृष्ण बचपन में थे ना, बचपन में बच्चा कुछ भी कर सकता है।
ऐसा बात नहीं है कृष्ण बच्चे नहीं थे, कृष्ण बच्चे नहीं थे। जब सुधा मैया उनके मुंह में देखी तो पूरा विश्व ब्रह्मांड देख ली, वो बच्चे कहां से थे? आपके मुंह को देखा 32 दांत भी दिखाई देने पड़ेगा है? कृष्ण बच्चे नहीं थे, कृष्ण 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 हैं सब परिस्थितियों में, चाहे बच्चे हों कोई भगवान। प्रभु भगवान भगवान थे हैं और रहेंगे। यहां मूर्ख लोग कहते हैं मैं इतना पैसा लाऊं तो भगवान बना दूंगा, भगवान कोई बनता नहीं है, भगवान भगवान थे हैं और रहेंगे। और कोई प्रश्न? ऑल राइट। गंधराश्रवण भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।